اتنی بڑی جنگ میں کسی ایک محاذ پر وقتی طور پر پیچھے ہٹنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ لڑائی ختم ہو چکی ہے. اس جنگ میں جو ہماری قومی بقا کی جنگ ہے, آخری فتح ہماری ہی ہوگی انشاءاللہ.
یہ بھاشن تھا جنرل یحییٰ خان کا, جو انہوں نے 16 دسمبر 1971 کو پوروی پاکستان میں پاکستانی سینا کے آتم سمرپن کرنے کے بعد پاکستانی جنتا کو سمبودھت کرتے ہوئے دیا تھا. 1969 میں جب پاکستان کے تتکالین راشٹرپتی جنرل ایوب خان کا پاکستان میں ورودھ بڑھ گیا تو انہوں نے جنرل یحییٰ خان کو ستا سونپ کر راجنیتی سے سنیاس لے لیا تھا. ڈکٹیٹر ہوتے ہوئے بھی یحییٰ خان نے کچھ ہی دنوں کے بھیتر چناؤ کرانے کا اعلان کیا. ان چناؤں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کے پہلے صاف ستھرے چناؤ تھے. 70 کے دشک میں پاکستان میں بھارت کے راجدوت رہے شنکر باجپئی بتاتے ہیں.
ان کے جو نیچے الیکشنز ہوئے تھے وہ پہلے بار فری اینڈ فیئر تھے. اس کا نتیجہ جا کے مشکل ان کو پھنسایا, کیونکہ بنگلہ دیش جو بنگلہ دیش ہے اس وقت ایسٹ پاکستان تھا, پوروی پاکستان. اس وقت پہلے بار فری اینڈ فیئر الیکشنز کی وجہ سے مجیب صاحب کی پارٹی بالکل سویپ کر گئی. اس کے علاوہ اگر جو پرانے طریقے سے ہوتے تو کافی گڑبڑ ہوتی تھی الیکشنز میں وہاں. دوسری بات ہے کہ اس کی وجہ سے ایسی پارٹیاں جیتیں جو پاکستان کو پھر آخر میں تباہی کر دیا. مگر انہوں نے تو کوشش کی تھی کہ جو بھی ہو یہ بالکل الیکشنز پہ کوئی شک نہ ہونا چاہیے.
اس فیصلے کا کارن یحییٰ خان کی بھلمن ساحت تھی یا انبھوہینتا؟ کچھ سال پہلے یحییٰ خان کے EDC رہے اسکواڈن لیڈر ارشد سمیع خان نے مجھے بتایا تھا.
ڈکٹیٹرز ڈو ناٹ ہیو دیئر ہینڈ آن دا پلس آف دا نیشن. فرینکلی دیئر فیڈ بیک کمز فرام بیوروکریٹس, فرام سائیکوفینٹس, فرام پولیٹیشنز دیٹ دے کریٹ دیم سیلوز. یحییٰ بینگ اے ڈکٹیٹر بلانگ ٹو دا سیم کیٹیگری. جیسے کہ ایک پولیٹیشین کو آرمی کی ٹیکٹکس یا آرمی کی اسٹریٹجی بہت کم پتا ہوتی ہے, اسی طرح سے ایک ملٹری مین ڈز ناٹ ہیو دی پولیٹیکل اکوپمنٹ. پالیٹکس میں تو دیر آر نو پرماننٹ فرینڈز اینڈ دیر آر نو پرماننٹ فورس. ہاؤ ایور اٹ از ڈفرنٹ ود دی ملٹری مین. ملٹری مین بلیو ان ڈسپلن, اینڈ ڈسپلن سیز اگر کسی سبارڈینیٹ نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کو ہٹا دو. یایا ہیڈ دا سیم پرابلم. یایا واز لیونگ آن دی بوروڈ سائٹ آف دی انٹیلیجنس ایجنسیز اینڈ دی نیشنل سیکورٹی سیل, جنہوں نے کہا تھا کہ جی 33 پولیٹیکل پارٹیز ہیں, الیکشن آپ فری اینڈ فیئر کراؤ تو یہ بڑی بکھری ہوئی پارلیمنٹ میں آئیں گی, آپ جس کو سپورٹ کرو گے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی اور پھر وہ آپ کی بات مانے گی, آپ پریزیڈنٹ رہو گے وغیرہ وغیرہ.
یحییٰ خان کی یہ بڑی ناسمجھی تھی کہ انہوں نے پاکستانی جنتا کے اس فیصلے کو سویکار نہیں کیا. شیخ مجیب گرفتار کر لیے گئے اور حالات اس حد تک بگڑ گئے کہ بھارت اور پاکستان یدھ کے کگار پر آ گئے. 70 کے دشک میں پاکستان کے ودیش سچیو رہے سلطان محمد خان اپنی آتم کتھا میموئرز اینڈ ریفلیکشن آف اے پاکستانی ڈپلومیٹ میں لکھتے ہیں.
یحییٰ خان یہ وشواس کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, اور اس کا انہوں نے کوئی کارن بھی نہیں بتایا کہ بھارت پوروی پاکستان میں سینیہ ہستکشیپ کرے گا. اس سمے پاکستانی سینا کے جنرلوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ وہ غیر لڑاکو بنگالیوں کو محج ایک چھرے کے زور پر جھکا دیں گے. اتہاس نے بعد میں سدھ کیا کہ وہ کتنے غلط تھے. اس لڑائی کے بعد پاکستان کا آکار آدھا ہو گیا. انہیں بہت شرمندگی اٹھانی پڑی اور اس مانسک آگھات سے ابھرنے میں انہیں کافی وقت لگا. ایک راشٹرپتی کے روپ میں ایک بکھری ہوئی آبادی کا نیتوتو کرنے کی قابلیت ان میں نہیں تھی. انیتک راجنیتیوں سے نبٹنے اور وشو راجنیتی کی جٹلتاؤں کو بھی سمجھنے کی ان کی کشمتا سیمت تھی.
13 دسمبر تک یہ بالکل اسپشٹ ہو گیا کہ پاکستان پوروی مورچے پر بری طرح سے پچھڑ رہا ہے. جب چین سے مدد کی ساری امیدیں ختم ہو گئیں تو یحییٰ نے مجبوراً امریکی راشٹرپتی رچرڈ نکسن کو فون ملایا. ارشد سمیع اپنی کتاب 3 Presidents and an Aide میں لکھتے ہیں.
ہر جگہ سے پریشان ہو کر یحییٰ خان نے راشٹرپتی نکسن کو سندیش بھیجا کہ وہ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. 13 دسمبر 1971 کی رات 2 بجے راشٹرپتی بھون کے ٹیلی فون آپریٹر نے مجھے فون کیا कि राष्ट्रपति निक्सन हमारे राष्ट्रपति से बात करना चाहते हैं। मैंने इंटरकॉम से याहिया को जगाया। नींद में चूर याहिया ने फोन उठाया। क्योंकि लाइन बहुत खराब थी, याहिया ने मुझसे कहा कि मैं दूसरी लाइन पर सारी बातें सुनूं और अगर लाइन टूट जाए तो निक्सन से बात करना जारी रखूं। निक्सन की बातों का लब्बोलुआब ये था कि वो पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित हैं और उन्होंने पाकिस्तान की मदद के लिए सातवां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेज दिया है। जैसे ही निक्सन ने फोन रखा, याहिया ने मुझसे कहा कि मैं जनरल हमीद को फोन लगाऊं। जैसे ही हमीद लाइन पर आए, याहिया लगभग चिल्लाते हुए बोले, हैम वी हैव डन इट, अमेरिकन्स आर ऑन द वे।
अमरीकी बेड़ा अगले दिन तो दूर ढाका के गिरने तक बंगाल की खाड़ी में नहीं पहुंचा। दिलचस्प बात यह है कि आजादी के बाद फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और जनरल याहिया खान दोनों दिल्ली में सेना मुख्यालय में तैनात थे। जनरल एस के सिन्हा अपनी आत्मकथा ए सोल्जर रिकॉल्स में लिखते हैं,
1947 में मानेकशॉ और याहिया खान दिल्ली में सेना मुख्यालय में तैनात थे। याहिया खान को मानेकशॉ की मोटरबाइक बहुत पसंद थी। वो इसे खरीदना चाहते थे लेकिन सैम उसे बेचने के लिए तैयार नहीं थे। याहिया ने जब विभाजन के बाद पाकिस्तान जाने का फैसला किया तो सैम उस मोटरबाइक को याहिया खां को बेचने के लिए तैयार हो गए। दाम लगाया 1,000 रुपये। याहिया मोटरबाइक पाकिस्तान ले गए और वादा कर गए कि जल्द ही पैसे भिजवा देंगे। सालों बीत गए लेकिन सैम के पास वो चेक कभी नहीं आया। 1971 की लड़ाई जीतने के बाद सैम ने मजाक किया, मैंने याहिया खां के चेक का 24 सालों तक इंतजार किया लेकिन वो कभी नहीं आया। आखिर उन्होंने 1947 में लिया गया उधार अपना आधा देश देकर चुकाया।
याहिया खान को लेडीज मैन कहा जाता था। कई महिलाओं से उनकी दोस्ती थी। मलकाए तरन्नुम नूरजहां को वो नूरी कहकर पुकारते थे और वो जनरल याहिया खान को सरकार कहकर बुलाती थी। अरशद समी याहिया और नूरजहां से जुड़ा एक किस्सा सुनाते हैं।
एक शाम थी कि जनरल याहिया के दोस्त बैठे थे उनके साथ, मैं अपने कमरे में जा चुका था तो मुझे उन्होंने समन किया। मैं गया, मुझे कहते हैं कि बेटा, he used to repeat himself, बेटा बेटा बेटा, ये नूरजहां का एक नया गाना आया, मैंने सुना है नूरजहां का एक नया गाना आया, मेरी चीचीता मेरी चीचीता, do you know about it? मैं कहती नहीं। अच्छा, तो ये सारे कहते हैं कि अभी वो गाना इतना कम रिलीज हुआ कि शायद नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरा एडीसी जो है वो लेके आएगा। तो खैर, अब मैं पठान हूँ और मेरी वाइफ जो है वो पंजाबी है, तो मैं उसको याद करता आ रहा हूँ क्योंकि मैंने ये लफ्ज पहले कभी सुना नहीं था, मेरी चीचीदा। तो अब मैं रट्टा लगाता हुआ आ रहा हूँ उनके कमरे से अपने कमरे को, और रस्ते में मैं भूल गया क्योंकि क्या था चीची के आई हैड टू कॉल अप लॉन्ग डिस्टेंस माय वाइफ एंड सेड, यार वो नूरजहां का कोई गाना है, कोई शेर से कोई चीज है, हाँ हाँ मेरी चीचीदा। अब वही बात, रात की 11 बज रहे, मैंने प्रेसिडेंसी की गाड़ी एक मंगवाई, उसमें बैठा तो बोरी बाजार है कराची में एक, मैंने कहा चलो वहां चलता हूँ सीधा। दूसरी बात है, दुकानें बंद हो चुकी थी, गलियों में घूमते हुए मैं वहां पहुंच गया, नॉक किया, बाहर आए, मैंने कहा यार मैं आपका एक कस्टमर हूँ पुराना, तो फरमाइए। मैंने कहा जी मुझे वो एक रिकॉर्ड चाहिए, नूरजहां का नई रिलीज है मेरी चीचीदा। कि जी जरूर आइए, कल सुबह आ जाइए, आपको दे देंगे। मैं कहा नहीं भाई, मेरी बैट लगी हुई है किसी के साथ कि मैं आज अभी लेके आऊँ। तो कहते मुझे कहते कि सर इस वक्त, मैंने कहा जी बिल्कुल इसी वक्त, मैंने कहा मुंह मांगी कीमत दूंगा। तो समझे कि शायद ये कोई बिगड़ा हुआ नवाब है। हम उनकी दुकान पे पहुंच के उन्होंने दुकान खोली, रिकॉर्ड निकाला, मुझे दिया। उस जमाने में वो रिकॉर्ड 5 रुपए का हुआ करता था, मैंने उनको 50 रुपए दिए। फिर मैं प्रेसिडेंसी में आके जब गया, प्रेसिडेंट साहब को वो रिकॉर्ड दिया, बड़े ही वाज वेरी एलेटेड, वेंट इनटू अ हुर्रा, वी हैव डन इट अगेन।
मेरी चीचीदा, मेरी चीचीदा, छल्ला महिला ने कर जाके शिकायत लाऊंगी, मैनू बदो बदी, मैनू बदो बदी, पीछे पीछे ला लिया कर जाके शिकायत लाऊंगी।
याहिया खान की सबसे नजदीक महिला दोस्त थी अकलीम अख्तर, जो जनरल रानी के नाम से मशहूर हो गई थी। उनकी महिलाओं से करीबी की वजह से उनकी बहुत बदनामी हुई, एक बार इंदर मल्होत्रा ने मुझे बताया था।
याहिया प्रोबेबली प्योरली एज ए सोल्जर मे हैव बीन बेटर देन अय्यूब, लेकिन सोल्जर स्टेट्समैनशिप नहीं थी उनमें। दूसरे, ये उनकी दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने महसूस किया कि भाई जिस वजह से अयूब गया है मैं वो चीज़ ना कर लूँ, तो इसलिए उन्होंने वो जो वन यूनिट था उसको तोड़ के बाकी सूबों को बहाल कर दिया वेस्ट में। ईस्ट के साथ तो उनको दिक्कत पड़ी रही थी, लेकिन उनकी दो बड़ी सख्त खराबियाँ थी। एक तो पर्सनल लाइफ उनकी, शराब बेतहाशा पीना, औरतें आ रही हैं, नाच गाना हो रहा है।
यह को पार्टियों में जाने का बहुत शौक था। एक बार वो राष्ट्रपति के तौर पर पूर्वी पाकिस्तान गए। वहां एक रात उन्होंने अपने एडीसी से कहा कि रात में वो बिना अपने सुरक्षा अमले को बताए एक पार्टी में जाएंगे।
यह मुझसे बोले, तुम्हें एक पार्टी में आमंत्रित किया जाता है। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, किसकी तरफ से? यह बोले, खंडोकर साहब। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, तुम यहां कौन सी कार इस्तेमाल करते हो? मैंने कहा, मर्सिडीज सर। उन्होंने कहा, आज तुम दूसरी कार मंगवाओ, ड्राइवर से कहो कि वो उसे तुम्हारे कमरे के बगल में पार्क करे, उससे कार की चाबी ले लो और उससे कहो कि अब तुम्हारी छुट्टी है। यह बोले, ठीक 9:05 पर तुम पिछले वाले वरांडे और अपनी कार की अंदर की लाइट ऑफ करोगे, 9:10 पर तुम कार का पिछला दरवाजा खोलोगे, 9:15 पर मैं कार की पिछली सीट पर आकर बैठूंगा, तुम मुझे बगल में रखी हुई चादर से कवर करोगे और ये ख्याल रखोगे कि मेरे करीने से सजाए हुए बाल न बिगड़ जाएं, दरवाज़ा बंद करोगे और प्रेसिडेंसी के गेट से बाहर निकलोगे, ये सुनिश्चित करते हुए कि किसी को इस बात का आभास न हो कि तुम पाकिस्तान के राष्ट्रपति को अपनी कार में ले जा रहे हो। सब कुछ योजना अनुसार हुआ। थोड़ी दूर चलने के बाद यहिया ने मुझसे कार रोकने के लिए कहा। वो आगे आकर मेरी बगल में बैठते हुए बोले, तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए कि तुम मेरे ड्राइवर हो। थोड़ा और आगे जाने पर उन्होंने कहा, पहले फूल वाले के यहाँ चलो और मिसेज खंडोकर के लिए फूल खरीदो। अपने दोस्त के घर पहुंचकर यहिया ने अपने हाथों से दरवाजे की घंटी बजाई। दरवाजा खुला और खंडोकर साहब राष्ट्रपति को वहां देखकर हक्का बक्का रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह चुपके से उनके घर पहुंच जाएंगे बिना किसी सायरन और लाओ लश्कर के। यहिया बोले, कानू तुम मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? अपने भारी शरीर के बावजूद यहिया खां बहुत अच्छे डांसर थे। उस रात उन्होंने पार्टी में मौजूद हर महिला के साथ डांस किया। चूंकि वो वीकेंड था, पार्टी देर रात तक चली। बीच बीच में यहिया मुझसे पूछते रहे, तुम्हें नींद तो नहीं आ रही? जिस तरह मैं उन्हें लाया था उसी तरह उन्हें वापस ले गया। यहिया कार की पिछली सीट से बाहर उतरे, मुझे धन्यवाद दिया और सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ चले गए।
यहिया के बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि उन्हें लोगों को तोहफे देने का बहुत शौक था, लेकिन इसके लिए वो सरकारी पैसे के बजाय अपना खुद का पैसा खर्च करते थे। उनके एडीसी अरशद समी खां अपनी किताब में लिखते हैं,
जैसे ही यहिया राष्ट्रपति बने उन्होंने मुझे निर्देश दिए कि मैं हमेशा अपने साथ कुछ उपहार तैयार रखूं, जिन्हें वो स्थानीय और विदेशी मेहमानों को दे सकें। ये कोई नई बात नहीं थी। अयूब खां के जमाने में भी हम इस तरह के उपहारों से भरा पूरा एक ट्रंक अपने पास रखते थे। दोनों के बीच फर्क सिर्फ इतना होता था कि यहिया हर उपहार के लिए पैसा अपनी जेब से देते थे। एक बार बेगम यहिया की एक दोस्त ढाका से मिलने उनके पास आई। वो उनके साथ राष्ट्रपति भवन के दालान में बैठकर चाय पी रही थी। तभी यहिया गोल्फ खेलकर वापस लौटे। बेगम यहिया ने उनसे फारसी में कहा, आज मेरी दोस्त का जन्मदिन है। यहिया बोले, मैं आज आपको क्या तोहफा दे सकता हूँ? उस महिला ने बहुत सकुचाते हुए कहा, अगर आप तोहफा देने पर इतना जोर दे रहे हैं तो अपनी इस्तेमाल की हुई कोई चीज मुझे दे दीजिए। यहिया बोले, इस वक्त तो मेरे पास ये गोल्फ टी शर्ट, पैंट और जूते हैं, ये किसी महिला को नहीं दी जा सकती। एक टॉवल रुमाल भी है मेरे पास जो मेरे पसीने से भरा हुआ है। मेरे पास एक चीज है आपके लिए, आप अपनी आंखें बंद करें और अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाएं। उस महिला ने अपनी आंखें बंद की और झिझकते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। यहिया ने अपने हाथ से सोने की ऑयस्टर रोलेक्स घड़ी उतारी और उस महिला की कलाई में पहना दी। आंखें खोलते ही उस महिला ने विरोध करते हुए कहा, मैं तो आपसे एक रुमाल की उम्मीद कर रही थी, ये तो बहुत महंगी चीज है, आप इसे वापस ले लीजिए। यहिया हंसते हुए बोले, एक बार दिए जाने के बाद तोहफा वापस नहीं लिया जाता।
1971 की लड़ाई में एक बार जब यहिया खां के हाथ से चीजें फिसलना शुरू हुईं, तो फिर उन्होंने रुकने का नाम नहीं लिया। उसके बाद तो पहल उनके हाथ से जाती रही और फिर उन्होंने हो रही घटनाओं पर रिएक्ट भर किया, लेकिन इसके बावजूद उनके साथी और दोस्त उन्हें एक मिलनसार और विनोदपूर्ण शख्स मानते थे। सुल्तान मोहम्मद खान लिखते हैं,
यहिया पर लोगों के बाहरी हाव भाव का कोई असर नहीं होता था। वो हाजिर जवाब थे और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर गजब का था। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनकी बौद्धिक क्षमता बहुत ज्यादा थी, लेकिन उनमें एक चीज पर्याप्त मात्रा में थी, कॉमन सेंस या व्यवहारिक बोध। वो ये नहीं छिपाते थे कि उन्हें बेहतरीन चीजों का शौक था। उनकी पसंदीदा शराब हुआ करती थी हॉर्सेज नेक ब्रांडी। जब भी वो काम नहीं कर रहे होते थे, उसकी एक बोतल उनकी बगल में रखी होती थी। उन्हें शिकार का भी शौक था और उनका निशाना काफी अच्छा था।
भुट्टो को अपना पद सौंपने के बाद याहिया ने उनसे हाथ मिलाते हुए कहा था, गुड बाय सर, आई विश यू लक। जब वो अपने एक और साथी जनरल पीरजादा की तरफ मुड़े तो उनके मुंह से निकला, अब आप एक आजाद शख्स हैं। याहिया ने जोर का ठहाका लगाते हुए अपने बेटे अली से कहा, हाँ अली, तुम और हम अब आजाद हैं। याहिया बहुत ज्यादा दिनों तक आजाद नहीं रहे और अपने जीवन के अगले 5 साल उन्होंने नजरबंदी में बिताए। इस दौरान उन्हें लकवा भी मार गया। जनरल जिया ने जब भुट्टो को सत्ता से हटाया, तब जाकर याहिया खां की रिहाई हो सकी। रेहान फजल, BBC दिल्ली।